मेरे प्रिय आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 9 अगस्त 2018 है और आज के इस afeis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे ईगो के बारे में बात करना चाह रहा हूं। ईजीओ, ईगो, जिसे हम घमंड भी, घमंड शब्द उतना फिट नहीं बैठता है, सच पूछिए। प्राउड शब्द तो बिल्कुल ही फिट नहीं बैठता, स्वाभिमान शब्द भी फिट नहीं बैठता। हिंदी में इसका जो अनुवाद किया गया है वह है अहम, लेकिन सच पूछे तो कभी कभी मुझे लगता है कि अहम शब्द भी शायद उतना उपयुक्त नहीं है। क्या होगा मित्रों, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे ये जरूर जानता हूं कि अगर मैंने ईगो शब्द का इस्तेमाल किया है तो आप सब समझ गए होंगे कि मैं किस विषय पर बात करने जा रहा हूं। क्योंकि थोड़ा सा ये मनोविज्ञान का क्षेत्र है और मनोविज्ञान के क्षेत्र में जितने भी भाव हमारे हैं, इमोशंस होते हैं, उनमें इतना बारीक अंतर होता है कि शब्दों का बहुत प्रमुख स्थान हो जाता है। अगर शब्दों के इस्तेमाल में हम जरा सा भी चूकते हैं तो पता लगा कि कुछ का कुछ अर्थ निकलने लगा है। तो मित्रों, मैं ईगो के बारे में आप सबसे बात करने जा रहा हूं और दरअसल यह विषय मैंने चुना इसलिए है कि अब इसी सप्ताह किसी दिन शुरुआत में मुझे ध्यान आ रहा है कि मैंने सौरभ शुक्ला जी का प्रसंग आप लोगों को सुनाया था, शायद मंडे की ही बात है, जीवन चरित्र के अंतर्गत हम लोगों ने बात की थी। तो सौरभ शुक्ला जी ने बताया था कि किस तरीके से सत्या फिल्म जब उनकी हिट हो गई तो वो अपने को बड़ा स्टार समझने लगे और फिर उसी तरह से अपने तामझाम बनाने लगे और उसी, आप कह लीजिए कि मानसिकता में रहने लगे, और उसी मानसिकता को मैंने उस समय ईगो नाम दिया था, शायद दिया था। उसी को लेकर के अगले ही दिन कुछ आप सब में से प्रिय श्रोताओं ने प्रश्न पूछे कि सर, इस ईगो के बारे में जरा सा बताएं, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें। जहां तक इसके अनुभव की बात है फ्रेंड्स, मैं नहीं समझता कि उसके बारे में मुझे कुछ कहना चाहिए। हम सब में ईगो होता है। आप देखिए कि जो छोटा सा बच्चा है उसमें भी कहीं ना कहीं ईगो आ जाता है। हालांकि वो जब भूख लगेगी तो झुंझलाहट होगा, नाराज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि वो कोई चीज मांग रहा है और आप उसे नहीं दे रहे हैं, बहुत गिड़गिड़ाने के बाद, उसके बार बार मांगने के बाद आपने उसे दे दिया, तो आप देखिए कि कोई कोई बच्चा ऐसा होता है, या कभी कभी कोई बच्चा उस चीज को नहीं लेगा, फिर उठा करके फेंक देगा, गुस्से में आकर के फेंक देगा। अब ये जो गुस्से में आकर के फेंक रहा है, ये क्रोध नहीं है। देखिए, हमें क्या लगता है कि ये उसका क्रोध है, बच्चा जो है ना गुस्सा हो गया, बेसिकली ये ईगो है। ईगो किस मायने में है? इस मायने में है कि मैं अभी तक आपसे अच्छे तरीके से मांग रहा था, अभी तक तो आपने दिया नहीं, जब मैं बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत रोया, बहुत आपको परेशान किया, तो अब आप मजबूरी में मुझे दे रहे हैं, तो लो मैं लेता ही नहीं हूं। तो अब मैं लो मैं लेता ही नहीं हूं, ये जो उसकी सोच हो रही है, ये सोच कहां से आ रही है? यानी कि उसके ईगो को ठेस लग गई, यानी कि उसके अंदर जो एक अहम का भाव है, जो इदम का भाव है, उसको चोट पहुंच गई, और इस चोट के पहुंचने के कारण वो गुस्सा हुआ है। सीधे सीधे गुस्सा नहीं हुआ, सीधे सीधे क्रोधित नहीं हुआ है, ये चोट लगी और चोट लगने की प्रतिक्रिया के स्वरूप वो क्रोधित हुआ, गुस्सा हो गया, फिर वो कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों, जो ईगो की पहचान होती है, सामान्य तौर पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हमेशा तो नहीं लेकिन ज्यादातर, वो दो चीजें मुझे महत्वपूर्ण मालूम पड़ती। देखिए, मैं बिल्कुल फिलॉसफी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मनोविज्ञान विषय की भी बात नहीं कर रहा हूं मित्रों, मैं सीधे सीधे लाइफ मैनेजमेंट के बहुत ही व्यावहारिक पक्ष की बात कर रहा हूं। इसीलिए आप इसे बहुत कोई एकेडमिक डिस्कशन मत समझिएगा मेरे लाइफ मैनेजमेंट को, है ना, ये तो बड़ा प्रैक्टिकल है और हम लोग बहुत ही प्रैक्टिकल आस्पेक्ट पर बात करते हैं, और मेरा जो विश्लेषण भी होता है, जो विषय भी होते हैं, वो बहुत ही प्रैक्टिकल लेवल के होते हैं। मैं इसके माध्यम से आपको कोई साइकोलॉजी का एक्सपर्ट नहीं बना रहा हूं, है ना, न मेरी उतनी सच पूछे तो क्षमता है। अब आप देखिए कि दो चीजें मुझे लगती हैं कि इन दो चीजों के आधार पर हम, मुझे लगता है कि अपनी पहचान कर सकते हैं कि ये ईगो है या नहीं है। पहली बात है ठेस लगना, जो मैंने अभी बात कही। होता यह है कि कोई कुछ कहता है और हम उसे सुनते हैं, और वो सामान्य तरीके से ही कह रहा है या सभी से वो ये बात कह रहा है, लेकिन सभी समान तरीके से उससे प्रभावित नहीं हो रहे हैं, लेकिन मैं प्रभावित हो जा रहा हूं, और मैं प्रभावित हो रहा हूं मतलब कोई सकारात्मक प्रभावित, सकारात्मक तरीके से प्रभावित नहीं हो रहा हूं। मैं जो प्रभावित हो रहा हूं वो नकारात्मक तरीके से, नकारात्मक यानी कि है मैं कहीं गुस्सा हो जा रहा हूं, मुझे खराब लग रहा है, मैं अनमना हो जाता हूं, मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, मैं अपने को किनारे कर लेता हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता, इस तरह का कोई भाव मेरे दिमाग में आता है क्योंकि उसने जो कहा वह मुझे अच्छा नहीं लगा। चलिए, अच्छा नहीं लगा, अब अच्छा कितना नहीं लगा उसी के आधार पर फिर मेरा रिएक्शन होता है। जब मुझे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता तो फिर मैं बहुत ज्यादा रिएक्ट करता हूं, प्रतिक्रिया दिखाता हूं। हो सकता है कि मैं भी कुछ बहस करने लगूं, मैं गाली गलौज करने लगूं, मैं हो सकता है हाथापाई करने लगूं, मैं तमतमाकर गुस्से में आकर उठकर वहां से चला जाऊं, कुछ भी हो सकता है। अब ये डिपेंड इस बात पर करेगा कि मुझे वह चीज कितनी बुरी लगी, यानी कि मेरे ईगो को उसने कितना ठेस पहुंचाया। और बड़ी बात यह है कि मान लीजिए कि मेरे जैसे ही 10 व्यक्ति वहां बैठे हुए हैं और उसने एक ऐसी बात कही जो मुझ 10 जो व्यक्ति बैठे हुए सब पर लागू होते हैं, मुझ जैसे 10 व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होती है। जैसे चलिए उदाहरण के तौर पर कहें, जो भारत में बहुत प्रचलित है, मान लीजिए कि उसने जाति को लेकर के कोई अपमानजनक शब्द कह दिया और हम जो 10 लोग बैठे हुए हैं हम उसी जाति के हैं, राइट। अब देखिए कि हम सब एक ही जाति के हैं और उसने जाति के लिए एक ही अपमानजनक वाक्य का प्रयोग किया है। अब देखिए कि जब ईगो को ठेस लगेगी तो हमेशा नकारात्मक चीजों से लगेगी, प्रशंसात्मक चीजों से नहीं लगेगी, है ना। लेकिन जो 10 पर जो प्रतिक्रिया हो रही है उसके एक वाक्य की, वो एक जैसी नहीं हो रही है। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाएगा, कोई व्यक्ति इतना उत्तेजित होगा कि वो अपने आप को कंट्रोल कर लेगा, नियंत्रित कर लेगा, कोई थोड़ा सा कसमसाएगा। तो देखिए 10 व्यक्ति हैं और 10 में प्रतिक्रिया अलग अलग है और 10 की जो जाति है वो समान है। अब वो कौन सा हमारे अंदर का मैकेनिज्म है जो इस एक वाक्य के अर्थ को जब हम भावार्थ के रूप में ले रहे हैं, अपने ऊपर प्रभाव के रूप में जब हम देखना चाह रहे हैं, तो उसे अलग अलग कर रहा है, वो कौन सी चीज है, हमें इसी मैकेनिज्म को समझना होगा। देखिए यहीं पर हर व्यक्ति विशिष्ट है, यूनिक है, एवरी मैन इज द यूनिक क्रिएशन ऑफ द नेचर। हर व्यक्ति प्रकृति का बहुत ही अनोखा, अनोखी रचना है, कोई डुप्लीकेट नहीं है। अगर एक जैसे होते तो सब पर एक जैसी प्रतिक्रिया होती। अब ये बात देखिए कि अब आप इसी वाक्य को लेकर के आंदोलन खड़ा कर दीजिए, फिर पता लगा उस जाति विशेष के सारे लोग खड़े हो गए हैं, उस आंदोलन में साथ दे रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि देखिए यहां तो सब एक जैसी प्रतिक्रिया हो गई। वो एक अलग बात है, वो तो अब आपने एक समूह बनाया, उनके इमोशंस को जगाया, उनको जो भी है सच्चाई बताई, आंदोलन खड़ा किया, उसके खिलाफ विद्रोह किया क्योंकि वो गलत बात थी, वो एक अलग ही चीज हो गई। यहां हम ईगो की जो बात कर रहे हैं बहुत ही इंडिविजुअल बात कर रहे हैं। और मैं खासकर समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं फ्रेंड्स कि जो ईगो होता है वो बेसिकली इंडिविजुअल होता है, बहुत ही व्यक्तिगत होता है, वह सामूहिक नहीं होता। ठेस लगना, और इसका जो दूसरा लक्षण है कि हम उसका अनुमान लगा सकें, उसे हम समझ सकें, वह है कि जो ईगो से जो भरा हुआ व्यक्ति होता है वो हमेशा दूसरों की आलोचना करता रहेगा। कितनी भी अच्छी चीज उसके सामने आप ले आइए, कितनी भी सही चीज आप उसके सामने ले आइए, उसको वो सही चीज और वो अच्छी चीज दिखाई ही नहीं देगी, वो हमेशा आलोचना करेगा। या हो सकता है कि कुछ चीजें जो बहुत अच्छी लग रही हैं उसकी आलोचना थोड़ा सा बचकर कर ले, या उसको छोड़ दे, लेकिन उसमें से कुछ ना कुछ आलोचना करने के लिए वो निकाल लेगा। उसका कारण क्या है? देखिए, इसका ईगो से क्या संबंध है? उसका ईगो से संबंध यह है कि जब उसके सामने कोई भी एक ऐसा व्यक्तित्व आता है जो उससे बड़ा है, क्योंकि जो सामने खड़ा, मान लीजिए कि एक आदमी है, उसकी लोग तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छा एक्टर है, मान लीजिए उसके लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं, लोग उसका ऑटोग्राफ ले रहे हैं, अखबारों में उसके बारे में खूब छपता है, उसके खूब फैन है। मेरा कोई फैन नहीं है, अखबारों में मेरे बारे में कोई नहीं छपता, मैं भी वहां खड़ा हूं, मुझे कोई देख ही नहीं रहा, ऑटोग्राफ लेने की बात तो दूर। अब क्या होगा? अब वो मेरा ईगो जागृत होगा, ईगो जागृत होगा, और मैं सोचूंगा यार ये आदमी आखिर में ऐसा है क्या, ये तो ये है, फलाना है, इसमें है क्या, इससे ज्यादा अच्छा तो मैं हूं। इसका मतलब यह हुआ कि उसका जो बड़ापन है उसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं, उसके बड़ेपन को, उसका जो बड़ापन है वो मुझे कहीं ना कहीं छोटा, अपने छोटेपन का एहसास करा रहा है, और इस तरीके से अपने छोटेपन के एहसास से मुझे फिर ठेस लग रही है। अब मैं क्या करूंगा? अब मुझे अपनी ठेस जो लगी हुई इस पर मुझे मरहम लगाना है ना, इसका इलाज करना है। तो इसका इलाज मैं क्या करूंगा? देखिए वहां तो इस इलाज मैंने कर लिया, उठ करके चला गया, मैं गुस्सा हो गया, हाथापाई करने लगा, तो यहां भी मुझे इलाज तो करना है ना। तो उसका इलाज करने के लिए या तो मैं तुरंत या फिर बाद में उसकी आलोचना करने लगूंगा। अरे यार वो क्या है, वो ठीक है एक्टर होगा, लेकिन वो तो फलाना फलाना है, उसका चरित्र ऐसा है, उसको क्या एक्टिंग आती है, वो तो फालतू का आदमी, इस तरह की बातें मैं करने लगूंगा। यह भी प्रमाणित कर रहा है कि आपका जो ईगो है वो जागृत है। तो मित्रों, मैंने ईगो के दो लक्षण आपको बताए हैं। हमें चाहिए कि हम अपने अपने ईगो को टटोलने की कोशिश करें। नो डाउट कि यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है और अभी तो ये अधूरा भी नहीं हुआ है, तो इस पर मैं आगे भी बातें आप लोगों से करूंगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप सब इस पर अपने अपने सवाल करें, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दें, अपने अपने अनुभव मुझसे मेरे साथ शेयर करें, तब मेरी बातें थोड़ी सी ज्यादा व्यावहारिक हो सकेंगी और आपके ज्यादा काम की भी तभी वो होंगी। तो दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस लाइफ मैनेजमेंट को मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।